वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम दसवां सन चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 44 से 46। बोर्ड पे श्लोक क्रमांक 45 लिखा हुआ है, 44 और 46 को रीड। श्लोक क्रमांक 44 बोर्ड पे 45 लिखा हुआ है तो इसको केवल सुनेंगे, फिर उसके बाद हम दोहराएंगे 45 नंबर। संदिश्य साधु लोकस्य कदने कदन प्रियान कामरूप धरान दिक्षु दान भाग्रिह माविशत। अनुवाद। कंस के अनुयायी ये राक्षस गण अन्यों को विशेष रूप से वैष्णवों को सताने में दक्ष थे और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को स्थाने की अनुमति देकर कंस अपने महल के भीतर चला गया। श्लोक क्रमांक 45। ते वै रजा परकृते तमसा मूढ़ चेतसा सताम विद्वेषम आचेरु आरत आगत मृत्युवा। ते वै रजा प्रकृत्य तमसा मूढ़ चेतसा सताम विद्वेषम आचेरु आरत आगत मृत्युवा। ते वै रजा प्रकृतय तमसः मूढ़चेतसा स्ताम विद्वेषम् आचेरु आरातागत मृत्यवा। शिलाभूपात की ते वे असुर मंत्रीगण वे निसंधे रजः प्रकृतयः रजोगुणी प्रकृति के कारण तमसा तमोगुण से परिपूर्ण मूढ़ चेतसा मूर्ख व्यक्ति सताम साधु पुरुषों को विद्वेषम स्ताना उत्पीड़न आचेरुहु संपन्न किया आरात आगत मृत्युवा। मृत्यु पहले से ही जो उनके निकट थी। अनुवाद। रजो तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को ना जानते हुए उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सर पर नाच रही थी साधु पुरुषों को स्ताना प्रारंभ कर दिया। तात्पर्य, जैसा कि भवगीता 2.13 में बताया गया है, दहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार इस शरीर में देहधारी जीव आत्मा बालपन से युवावस्था तथा फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर को चला जाता है। स्वरूप सिद्ध पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। रजो तथा तमोगुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, किंतु ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मों का फल भी जानना चाहिए, जैसे कि अगले श्लोक में कहा गया है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 40। आयुष्यम यशो धर्मम लोकानाशीष एवच हंतिशयांसि सर्वानि पुंसो महत अतिक्रमा। हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को स्ताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोकों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजा कंस के अत्याचार नामक 4वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञान। तो शुरू करने से पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें जिसके माध्यम से हम सब भक्ति में प्रगति कर सकें। तो पहले बड़ा संदर्भ को समझेंगे, कौन सा संदर्भ चल रहा है। तो जब कंस को जो दुर्गा देवी है, महामाया है, वो कंस को बताती है कि आपका जो काल है वो किसी अलग जगह पे वो जन्म ले चुका है और बहुत ही जल्दी आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर कंस वसुदेव और देवकी को सांत्वना देते हैं और उसके बाद उनको रिलीज भी कर देते हैं। फिर उसके बाद जब कंस ये सब बातें अपने सैनिकों को बताते हैं, अपने मंत्रियों को बताते हैं, तो उनके मंत्री फिर कंस को एडवाइस करना शुरू करते हैं। तो कंस को बताते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जितने ही बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 10 दिन में या उसके आसपास के समय में जिन्होंने भी जन्म लिया है, हम सबको क्या करते हैं, मार देते हैं, आसुरी मानसिकता है। तो फिर बाद में कहते हैं कि बच्चों को मारेंगे तो हो सकता है जो देवी देवता हैं वो हमारा विरोध करें, तो हम क्या करेंगे, जो देवी देवताएं हैं खास जो डेमी गॉड्स हैं, देवता लोग हैं, पर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कंस को सांत्वना देते हैं, जो देवता हैं वो तो आपके धनुष की प्रत्यंचा की आवाज सुन के ही घबरा जाते हैं, जैसे ही अपनी भौहें हिलाते हैं, और इतनी बार आप उन देवताओं को युद्ध के मैदान में हरा चुके हैं, वो तो आपसे डर के भागते हैं, तो देवताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो निर्भीक होके हम इन बच्चों का वध कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं कि जो ये देवता हैं, इनके जो मूल हैं वो हैं विष्णु, विष्णु के चरणों में इन्होंने आश्रय ग्रहण किया हुआ है। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातना तस्य च धर्म गो विप्राश तपो यज्ञ च दक्षिणा। कि जो विष्णु है वो सभी देवताओं के मूल हैं, जो विष्णु हैं उनकी आराधना धार्मिक सिद्धांतों से की जाती है, और जितने भी धार्मिक सिद्धांत हैं उनका मूल क्या है, ब्रह्म गो विप्र, शब्द ब्रह्म वेदास, और जो गाय है और जो ब्राह्मण है, तपो यज्ञ स दक्षिणा, तपस्या और यज्ञ। तो ये 5 चीजें क्या है, धर्म का मूल है, और धर्म विष्णु का मूल है, और जो विष्णु है वो देवताओं के मूल है। तो हम क्या करेंगे, हम गायों की हत्या करेंगे और ब्राह्मणों की हत्या करेंगे, ब्राह्मणों और वैष्णवों की हत्या करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा और तपस्या का नाश हो जाएगा, क्योंकि भक्तों से ही, ब्राह्मणों से ही धर्म की स्थापना होती है, धर्म स्थापना हेतु साधु व्यवहार। तो अगर साधु खत्म हो जाएंगे, धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं होगा, तो धर्म खत्म हो जाएगा, है ना। और अगर साधु खत्म हो जाएंगे तो जो तपस्या है, साधु लोग अपने आचरण से तपस्या करके उसके सिद्धांत को एस्टेब्लिश करते हैं, तो तपस्या भी खत्म हो जाएगी। और गाय को मार देंगे तो गाय के घी से यज्ञ होता है, तो यज्ञ भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें जब खत्म हो जाएंगी जो विष्णु है वो खत्म हो जाएंगे, विष्णु खत्म हो जाएंगे तो फिर देवता अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। तो पूरा प्लानिंग कंस को देवता जो उनके मिनिस्टर हैं पूरी समझाते हैं। फिर इसके बाद 42वें श्लोक में बताते हैं कि जो विष्णु है ये कौन है, सर्वसुर अध्यक्ष हो, सर्वसुर अध्यक्ष हो, जितने भी डेमीगॉड हैं सबके अध्यक्ष हैं, असुर द्विज, जितने भी असुर हैं उन सबसे द्वेष करने वाले हैं, गुहाशय ये सबके हृदय में छुपे हुए हैं। तो एकमात्र उपाय है विष्णु का वध करने का, सावी वधो उपायो, एक ही उपाय है विष्णु को वध करने का, वो क्या है, साधु विहिंसनम, साधु लोगों के साथ हिंसा की जाए। तो यहां पे अपनी टीचिंग्स को कंक्लूड कर देते हैं कि आप ये एस्टैब्लिश हो गया कि साधुओं की हत्या करनी है। श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की, गौर निताई की, रघुशील भोपाद की। तो इन वचनों को सुनकर फिर कंस निश्चित कर लेता है कि अब हमें क्या करना है, बच्चों की, ब्राह्मणों की, गायों की हत्या करनी, और ये बोल के फिर अपने कक्ष में चला जाता है। तो आज का जो श्लोक है तो इसमें फिर बताया जा रहा है कि रजो तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को ना जानते हुए उन असुरों ने जिनकी मृत्यु उनके सर पर नाच रही थी साधु पुरुषों को स्ताना प्रारंभ कर दिया है ना। तो ये आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने कंस से क्या किया, अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। तो भगवद्गीता के 16वें अध्याय में भगवान इस आसुरी मेंटालिटी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुर असुरा, ना शौचम ना पिच आचारो ना सत्यम तेषु विद्यते, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये असुरों को मालूम नहीं होता। जना ना विदुर असुरा है ना, किस चीज को करने से भला होगा और किस चीज को करने से नुकसान होगा ये उनको मालूम नहीं होता। तो केवल रजोगुण और तमोगुण के कारण ही वो अपने सारे डिसीजन लेते हैं, ना शौचम ना पिच आचारो ना सत्यम तेषु विद्यते, ना ही वो क्लीन होते हैं, ना ही उनका आचरण सही होता है और ना ही उनके अंदर सत्यता प्राप्त होती है। अभी कुछ ही समय पहले जो कंस है उनको देवकी और वसुदेव को बड़े अच्छे अच्छे वचन बोल के आए हैं और अभी यहाँ पे सारे वचनों को भूल गए हैं, है ना। तो कोई भी जो असुर व्यक्ति है, कोई भी वाव लेता है, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वाव कभी भी वाव से वो पीछे हट सकता है। न सत्यम तेषु विद्यते, कोई सत्यता प्राप्त नहीं होती है ना। और क्या करना है क्या नहीं करना है मालूम नहीं है। जैसे शिला पूपा काफी बार प्रवचनों में बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हम केवल भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं और फिर भी जो द्वेषी लोग हैं हमसे इतना ज्यादा वो द्वेष करते हैं, हमारी गलती क्या है, हम केवल भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, ये हमारी गलती है। तो ऐसे एक बार 4-5 साल पहले मायापुर का ट्रिप जा रहा था तो ट्रेन में भक्त लोग संगीतन कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो ईस्टर क्लास के डिवोटी से एक डिवोटी हैं जो हमेशा गौनिता ही लेके आते हैं, तो ट्रेन में जाते हैं संगीतन कर रहे होते हैं तो 3 लोग खड़े हो जाते हैं, गौर निताई के आगे खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं हम इस संगीतन को आगे नहीं जाने देंगे। तो एक दो डिवोटी भी नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे, आपकी ट्रेन थोड़ा है। तो कहते हैं आपकी भी नहीं है। तो बहुत ज्यादा कहा सुनी हो जाती है, हाथापाई होने वाली होती है, हम भोगलीला भू आगे उनको छुड़वाते हैं। तो फिर वहां से संगीतन बंद होकर फिर आगे आगे वाली बोगी से शुरू होता है और उस बोगी के बाहर एक भक्त को खड़ा कर देते हैं कि जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने आता है उनको बोलते हैं यहाँ चांद काजी बैठा हुआ है, यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये असुरों को मालूम नहीं होता है, असुरी की मेंटेलिटी है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना। तो यहां पे बताया गया है जिनकी मृत्यु उनके सर पर नाच रही थी, तो ऐसा करने से वो अपनी मृत्यु को ही अपने पास बुलाते हैं। तो अगला जो श्लोक है बहुत ही, उसमें बताया गया है कि क्या क्या इसके लक्षण, क्या क्या इनके नतीजे होते हैं। आयु श्रियम यशोधर्मम लोकान आशीष एवच हंती श्रेयांसी सर्वानी पुमसो महद अतिक्रम, कि जो व्यक्ति महान पुरुषों के प्रति अपराध करता है, महद अतिक्रम तो क्या होता है, आयु, आयु कम हो जाती है, श्रेय कि ब्यूटी, यश का जितना भी ऐश्वर्य है यश है वो सब समाप्त हो जाता है, धर्मम लोकान आशीष एवच उनका जो भी जितने भी धर्म के सिद्धांत पालन किए हैं उसको पालन करके जो भी प्राप्त हुआ है सब नष्ट हो जाता है। लोकान आशीष, अगर वो हेवनली प्लैनेट्स में जाने के योग्य भी हैं तो वो भी योग्यता उनकी समाप्त हो जाती है। हंति श्रेयांसी सर्वानी, जितने भी उनको आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं बड़े बुजुर्गों से साधु लोगों से, जितने भी आशीर्वाद प्राप्त हुए सारे आशीर्वाद ध्वंस हो जाते हैं। पुंसो महद अतिक्रमः, जब कोई व्यक्ति महान पुरुषों के प्रति अपराध करता है। तो महान पुरुष का मतलब है वैष्णव। भगवान इसका इसके बारे में भविता में बताते हैं, महात्मान सुमाम पार्था दैवी प्रकृति माशिता भजनते अनन्य मनसो ज्ञातवा भूतादि अव्ययम। तो ये महान पुरुष की डेफिनेशन है, महात्मान सुमाम पार्था दैवी प्रकृति माशिता, कि जिस व्यक्ति ने भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय लिया है वही क्या है, महात्मा है, वही महद है। तो ऐसे महात्माओं के प्रति जब अपराध किया जाता है तो ये सब जो चीजें हैं वो सारी हमारी क्या हो जाती हैं, नाश हो जाती हैं। सबसे पहले बता के आयु ना, तो वैसे वो आयु वैसे ही कम है कलयुग में, मैक्सिमम 70-80 साल तक व्यक्ति जीता है। तो अगर वो वैष्णव अपराध करेगा तो उसकी आयु और भी कम हो जाती है ना। जैसे हम हिरण्यकश्यपु के केस में देखते हैं तो हिरण्यकश्यपु 36,000 साल तक तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वर मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो। तो बाद में ऐसा नहीं होता, फिर बाद में पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं, उनको सब बताते हैं कि दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं ना। उनके जो भाई थे हिरण्याक्ष, उनको वरादेव ने मारा था, जो कि जानवर के रूप में आए थे। तो कहते जानवर से भी ना मरूं, मनुष्य से भी ना मरूं, तो सारे वो अपना जितना भी होता है वो मांग लेते हैं। बताया जाता है कि तपस्या करने से पहले बहुत उनकी आयु वैसे ही बीत चुकी होती है, बहुत देर से राज्य कर रहे होते हैं, और तपस्या करने के बाद जब अपने 5 साल के बेटे के प्रति अपराध करते हैं, प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करते हैं, तो बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। तपस्या नहीं की थी उससे पहले वो ज्यादा जी चुके होते हैं, तपस्या करने के बाद अपराध के फल के रूप में बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। और जितने भी आशीष उनको प्राप्त हुए थे, जितनी बेनिडिक्शंस उनको प्राप्त हुई थी ब्रह्मा जी से, वो सारी बेनिडिक्शंस खत्म हो जाती, और ब्रह्मा जी भी उनको आके नहीं बचा पाते, है ना। तो कोई देवी देवता भी रक्षा नहीं कर सकता अगर हम किसी के प्रति वैष्णव अपराध करते हैं। हम रावण के केस में देखते हैं, है ना, रावण के पास सोने की लंका थी, बहुत ऐश्वर्य था। तो इसी श्लोक के ऊपर मैं हिजोलिनस राधा गोविंद स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज बता रहे थे कि जैसे ही रावण ने विभीषण के प्रति अपराध किया, जैसे उसको उसने लात मारी, उसी टाइम या जो रावण था वो यशहीन हो गया था। बाकी जो बाद में वो सारा प्रोसेस था, तो जिस टाइम पे उन्होंने विभीषण के प्रति अपराध किया उसी टाइम पे जितना भी उसका यश था, सौंदर्य था, सब उसका खत्म हो जाता है। ऐसे दुर्योधन ने विदुर जी के प्रति अपराध किया, पांडवों के प्रति अपराध किए, तो इसी कारण जितने भी 100 के 100 भाई थे सब क्या हो गए, मारे जाते। हालांकि जो अर्जुन थे वो मारना नहीं चाहते थे, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी कौरवों को देखते हैं तो अर्जुन घबरा जाते हैं, तो कहते हैं अहोबत महत्पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यता यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपानय धात्राश्रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो हे कृष्ण अहोबत महत्पापम, कितना बड़ा पाप हम करने जा रहे हैं, अहोबत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेना हंतुम स्वजनम उद्यता, कि राज्य सुख को प्राप्त करने के लिए हम अपने स्वजनों को मार रहे हैं। वो अभी भी कौरवों को अपना स्वजन मान रहे थे, ये मेरे हमारे स्वजन है। तो जो भक्त हैं वो कभी भी किसी के प्रति जो अपराध है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते कि अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं मुझे मार भी दें तो ये मुझे मंजूर है, पर मैं इनको नहीं मारना चाहता। अहोबत बहुत हैरानी की बात, इस तरह से बोल रहे हैं मैं ये नहीं कर सकता, पर जो भगवान थे वो उनको मारना चाहते थे। ऊपर पहले भगवीता के पहले अध्याय के परपर्स में बताते हैं कि अर्जुन ने उनको माफ कर दिया था, पर जो कृष्ण थे वो उनसे बदला लेना चाहते थे। जो भक्त है कभी किसी से बदला नहीं लेना चाहता, पर भगवान उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं जो भक्त के प्रति अपराध करता है। तो भगवान उनको कहते हैं नहीं तुम युद्ध करो, युद्ध आय युद्धस्व, और पाप से डरो मत, कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा, नायवम पापम वापस्यसि, कोई पाप तुम्हें नहीं लगेगा, तुम इनका वध करो। मैंने पूरी योजना बना ली इनको मारने के लिए, उनको दिखाते भी हैं ग्यारहवें अध्याय के अंदर। तो ये जो वैष्णव अपराध है इसका ये हमें फल प्राप्त होता है अगर हम किसके प्रति ऐसा वैष्णव अपराध करते हैं, है ना। आयु श्रियाम, है ना, जो श्रीय है ब्यूटी है, हमें गोपाल चक्रवर्ती केस में देखते हैं कि जब गोपाल चक्रवर्ती, ये चैतन्य चरितामृत में कथा आती है मध्य लीला में, जब गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं वाचिक रूप से करते हैं, है ना। तो हरिदास ठाकुर बता रहे होते हैं एक सभा के अंदर कि जो भगवान का जो नाम है, नाम के आभास मात्र से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, पर जो गोपाल चक्रवर्ती थे वो एक शुष्क ज्ञान को फॉलो करते हैं। तो कहते हैं कि हजारों हजारों जन्म लेने के बाद कोई व्यक्ति अगर सौभाग्यशाली है उसको मुक्ति प्राप्त होती है, और ये हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान के नाम के आभास मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उनको तो पूरा ज्ञान नहीं है। तो उनको चैलेंज करते हैं पूरी सभा के बीच में, कहते अगर ऐसा नहीं हुआ, भगवान के नाम के आभास मात्र से लिबरेशन प्राप्त नहीं हुई, तो मैं आपका नाक काट दूंगा, नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर तो विनम्र थे, वो कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ अपना नाक मैं खुद ही काट लूंगा। पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है, ये क्या हो गया, इतना बड़ा वैष्णव अपराध हो गया। हिरण्य मजुमदार गोवर्धन मजुमदार उनको पूरा तिरस्कार कर देते हैं गोपाल चक्रवर्ती के, पर हरिदास ठाकुर उनके इस अपराध को मानते नहीं है, बल्कि उनको बहुत बुरा लगता है कि लोगों ने गोपाल चक्रवर्ती के प्रति इतना उनको बुरा भला कहा। और वो चांदपुर नाम की जगह होती है, तो वहां की उस जगह को छोड़ के भी शांतिपुर चले जाते हैं कि मेरे कारण इतना ज्यादा यहाँ पे उत्पात फैल गया। पर हम देखते हैं जो गोपाल चक्रवर्ती थे, बताया गया चैतन्य चरितामृत के अंदर कि जो उनकी उंगलियां थी वो कमल की पंखुड़ियों के समान थी, ऐसा बताया गया उसने कि जब, पर क्योंकि वो हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं, जितने भी उनकी हाथों की उंगलियां पांव की उंगलियां थी सारी कोढ़ के रोग से गुस्सों के सारी खराब हो जाती हैं। उनका जो नाक था जीवा थी वो भी क्या हो जाती है, गल जाती है। केवल वाचिक रूप से उन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया। श्रियम, तो जितनी ब्यूटी है वो सारी हमारी खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है अगर हम वैष्णव अपराध को करते हैं। दक्ष प्रजापति जैसे उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया तो उनको बकरे का सिर धारण करना पड़ा, है ना। तो ये इसका हमें फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए पूरे शास्त्र में बताया गया है कि जो वैष्णव अपराध है उससे हमें हमेशा बच के रहना चाहिए, इतने ज्यादा उसके हमें भयावह फल प्राप्त होते हैं। और हम भी अपने जीवन में देखते हैं भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो अलग अलग स्तर पे हम अलग अलग तरीके से कई बार अपराध करते हैं। जैसे कोई अगर बाहरी दृष्टि से कोई जूनियर है तो अपने सीनियर की अगर आज्ञा को नहीं मानता है तो वो अपराध करता है। हरि नाम में आता है गुरु अवज्ञा, गुरु अवज्ञा जब हम करते हैं तो हमारे से गुरु के प्रति अपराध होता है, है ना। अपने साथ के भक्तों के बीच में अपराध होता है ना। अपने जो नीचे के भक्त हैं बाहरी रूप से जो जूनियर डिवोटीज है उनके प्रति हम अपराध करते हैं ना। अलग अलग तरीके से होता है ना। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम है शास्त्रों में जिनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। बताते हैं चैतन्य भागवत के मध्य खंड में कथा आती है कि जब नित्यानंद प्रभु जगाई और मदाई का उद्धार करते हैं, तो जो जगाई और मदाई थे बहुत ही पापी व्यक्ति थे, हम सबको मालूम है। तो भगवान जब उनका उद्धार करते हैं तो उद्धार करके उनको बोलते हैं कि आज से जितने भी तुमने गलत कार्य किए हैं आज के बाद आपको ये कार्य नहीं करने हैं, तो आज मैं तुम्हें पूरी तरह से शुद्ध कर देता हूं, तो तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाता हूँ। तो भगवान जगाई मदाई को अपने घर लेकर जाते हैं, फिर घर में जाते हैं और बहुत वहां पे फिर अच्छी तरह से बहुत सुंदर कीर्तन किया जाता है। कीर्तन करने के बाद सभी वहां पे वैष्णव बैठते हैं और साथ में जगाई मदाई को बिठाया जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, जगाई मदाई का गुणगान करना शुरू करते हैं, कहते आज से मैं तुम्हारे मुख से खाऊंगा, आई विल ईट थ्रू योर माउथ, आपके मुख से मैं खाऊंगा, आई विल इनकार्नेट इन योर बॉडीज, मैं आपके शरीर में मैं अपने आप को एक तरह से अवतार लूंगा, इस तरह से बोलते हैं ना। और सही भक्तों को बोलते हैं कोई भी जगाई मदाई से भेदभाव नहीं करेगा, सब इनके साथ बैठेंगे, इनके साथ बैठ के प्रसाद पाएंगे ना। तो मैंने आज इन दोनों को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया है, क्या तुम सब देखना चाहते हो, तो कह रहे देखो। तो भगवान क्या करते हैं, एकदम से भगवान का बॉडी का कलर होता है ब्लैक हो जाता है कि देखो जितने भी इनके पाप हैं मैंने सारे अपने ऊपर ले लिए हैं, भगवान का पूरा बॉडी कलर ब्लैक हो जाता है। कहते जो व्यक्ति इन दोनों के प्रति अपराध करेगा जितने भी पाप हैं सारे मैं उनके ऊपर छोड़ दूंगा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। और जगाई मलाई अभी आधे पौने घंटे पहले भक्त बने हैं है ना, गंगा के किनारे। तो कहते आज मैं इन दोनों को ये पदवी प्राप्त, ये पदवी प्रदान करूंगा जो कि ब्रह्मा और शिव को भी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने इनके ऊपर कृपा की है, तो पूरा जो ऐश्वर्य है भक्ति का मैं इन दोनों को प्रदान करूंगा। तो ये जगाई मदाई बहुत भगवान के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि जो लोग तुम्हें छूने के बाद गंगा में स्नान करते थे वही लोग आज तुम्हें छू के गंगा का स्नान करेंगे, है ना। तो इतना गुणगान भगवान जगाई मदाई का करते हैं। और फिर जगाई मदाई को लेके भगवान द्वारा फिर गंगा में जाते हैं और वहां पे फिर कीर्तन होता है, है ना। और वहां पे भगवान ऐसी घोषणाएं करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जानने के लिए। तो भगवान कहते हैं स्न्यासिर सभा यदि हय निंदा कर मध्य पेरे सभा हयते से सभा अधम, कि अगर कोई सन्यासियों की सभा भी है, कोई सभा है जिसमें बहुत से सन्यासी बैठे हुए हैं और वो सभा अगर किसी वैष्णव की निंदा कर रही है तो मैं उस सभा को शराबियों की सभा से भी अधम मानता हूं। तो इन शराबियों को तो मैं कृष्ण प्रेम प्रदान कर दूंगा पर इन सन्यासियों को मैं कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करूंगा जो कि एक वैष्णव की निंदा करते हैं। तुम देख सकते हैं कि वैष्णव जो ऑफेंस है कितना ज्यादा घातक है। हम कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं तो सीनियर डिवोटी बन गया हूं, मुझे भक्ति में आए बहुत समय हो गया है, तो जो भी नया नया भक्त आया है मैं उसके प्रति अपराध कर सकता हूं। भक्ति के किसी भी स्थिति पर जाके हम ऐसा नहीं कर सकते। या आप कह सकते हो कि हम तो बहुत एक वैष्णव की सभा में बैठे हैं और इस वैष्णव ने तो गलत कार्य किया है, जस्टिफाइड गलत कार्य किया है, साबित भी हो गया है, हम सभा के बीच में उनकी चर्चा कर सकते हैं या मीटिंग में उनकी चर्चा कर सकते हैं। तो इससे हम समझते हैं कि उस सभा का फिर क्या होगा, भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताया गया श्लोक है। तो इसलिए बहुत ही ग्रेव ऑफेंस है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन डिवोशनल सर्विस कभी भी हम वी कैन नॉट टेक वैष्णवास फॉर ग्रांटेड, कभी भी हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते वैष्णव अपराध को करें। और आगे भगवान बताते हैं ऐ दुई जनेर ये करीबा परिहास ऐ दुएर अपराधे तार सर्वनाश, कि जो व्यक्ति इन दोनों के प्रति अपराध करेगा तो उसका मैं खुद क्या करूंगा, सर्वनाश करूंगा। और जिसका चैतन्य महाप्रभु सर्वनाश करेंगे उसका फिर उद्धार कैसे हो सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब ये सब सुनते हैं सभी वैष्णव सभी जगाई मदाई को दंडवत प्रणाम करना शुरू कर देते हैं गंगा के किनारे, कोई अपराध नहीं करना जगाई मदाई के प्रति, है ना। तो इससे हम अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे कोई जूनियर है चाहे कोई सीनियर है चाहे कोई हमारे साथ के भक्त हैं तो किसी के प्रति भी हम अपराध नहीं कर सकते, करेंगे तो फिर ये सब हमें झेलना पड़ेगा, है ना। तो इसके साथ ही हम ध्रुव महाराज के प्रसंग से भी देखते हैं कि अगर कोई वैष्णव नहीं भी है ना, अगर उसके प्रति भी हम अपराध करते हैं और बाद में वही अगर व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो वो जीव अपराध हमारा वैष्णव अपराध में कन्वर्ट हो जाता है, प्रभुपाद परपट में इसका मेंशन करते हैं, है ना। और वैष्णव को तो छोड़ ही दें कि अगर सिर्फ जीव अपराध भी करें तो वो भी भगवान को बहुत ज्यादा अप्रसन्न करता है। चैतन्य महाप्रभु एक बार जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन कर रहे थे तो एक स्त्री आती है तो उनके ऊपर चढ़ के भगवान के दर्शन करती हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहती थी तो अपनी ईगरनेस में वो नहीं देख पाती, मतलब भगवान को इतना रिकग्नाइज नहीं करती तो कंधे पे चढ़ के वो दर्शन करती। जो गोविंद थे वो उनको डांटना शुरू करते हैं, कई बार सर्वेंट्स डांटते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, पर भगवान क्या करते हैं उनको रोकते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं कि इनके अंदर ज्यादा उत्सुकता है भगवान के दर्शन करने की मेरे से बजाय, है ना। तो सभी जीव क्या है, भगवान के अंश हैं, अहम बीजः प्रदपिता। तो कोई भी पिता ये नहीं, उनको किसी पिता को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर कोई उसका अच्छा बच्चा भी है और दूसरे बच्चे का वो अपमान करे। तो जभी भगवान सभी भगवान के अंश हैं, चाहे वो भक्ति में नहीं भी हैं तभी भी हम किसी का परिहास या निंदा नहीं कर सकते, आउट ऑफ क्वेश्चन। तो इसी तरह से श्लोक में बता रहे हैं कि आयु श्रीयम यशो धर्म, कि आयु उसकी ब्यूटी, उसका यश, उसका धर्म, उसका आशीष, उसके बेनिडिक्शन सब समाप्त हो जाते हैं जब हम किसी महान व्यक्ति के प्रति अतिक्रम करते हैं, उसके प्रति अपराध करते हैं, है ना। तो ये केवल शास्त्रों के कहने की बात नहीं, आप तो कह सकते बहुत पुरानी बातें हैं, आज के टाइम पे तो शायद थोड़ा इसकी जो डिग्री है वो कम हो गई होगी। तो शास्त्रों में देखते हैं कि बहुत डिग्री का ऑफेंस मिलता है ना, पर ऐसा नहीं, हम देखते हैं। जैसे एक सॉलिड ब्रेड नाम की पुस्तक है, तो उसमें मैंने बहुत देर पहले पढ़ी थी, तो उसमें बताते हैं कि जो भक्तों को जेल के अंदर डाला जाता है, तो जेल में प्रताड़ना दी जाती है उनको, पर जो एक जेलर थे उनको उनकी पत्नी बोलती है कि अगर तुम आज किसी हरे कृष्णा वाले को पीट के नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे साथ संबंध स्थापित नहीं करूंगी, यौन संबंध स्थापित नहीं करूंगा। तो इस मोटिवेशन से वो एक भक्त को बहुत ज्यादा पीटते हैं जेल के अंदर, बताते हैं कि उनकी कमर के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लिखा है एक्सक्रूसिएटिंग पेन, बहुत ज्यादा उनको पेन करते हैं। तो भक्त तो हालांकि इसको कर्ष नहीं करते, पर स्वाभाविक तो उनके मुंह से उनके प्रति कर्ष निकल जाता है कि तुम्हारा सर्वनाश हो रहा है, इस तरह से उनको बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो मालूम नहीं है। तो उसी दिन रात को व्यक्ति जा रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो पूरी फैमिली के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया, पूरी फैमिली का मृत्यु हो जाती, उसके बाद सभी पुलिस वाले डर जाते हैं तो कोई हरे कृष्णा को भी हाथ नहीं लगाता दोबारा वहां पे, इसमें लिखा हो। तो ये कोई शास्त्रों में बताएगी पुरानी की बातें नहीं है, आज के टाइम पे हम ऐसी चीजें अनुभव करते हैं। जो मुंबई का जो केस चल रहा था वो जमीन को लेके, जो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, लैंड ओनर थे, तो उन्होंने भक्तों के साथ बहुत गलत तरीके से पेश आए थे, तो उनका भी क्या होता है इसी तरह से उनको भी रिजल्ट सहन करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो महद अतिक्रम है, वैष्णव अपराध है, बहुत बहुत ज्यादा गंभीर अपराध है। क्यों है? क्योंकि भगवान को भक्तों से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। तो भक्तों के प्रति जब कोई अपराध होता है तो इससे भगवान सबसे ज्यादा अप्रसन्न होते हैं। नथिंग डिसप्लीजेस कृष्णा मोर देन वैष्णव ऑफेंस। वैष्णव ऑफेंस के से ज्यादा कोई भी चीज भगवान को, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान को अप्रसन्न करे। तो भक्ति में आते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भक्ति करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, समसिद्धिर हरितोष्णम, भगवान को संतुष्ट करना, है ना। तो कई बार सेवा का एक्सक्यूज बना के भी हम कई बार वैष्णव अपराध करते हैं, मुझे तो सेवा ही करनी है, तो सेवा के बीच में ये तो करना आवश्यक है ना। तो सेवा का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना ना। तो अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो जो भी पर्पस है सेवा करने का वही पर्पस हमारा डिफीट हो जाता है, तो फिर क्या सेवा करेंगे? होल पर्पस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज डिफीटेड जब हम वैष्णव अपराध को करते हैं, कि भगवान सीधे ही अप्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर सेवा के लिए भी किसी को सजेशन देनी है, किसी को करेक्शन देनी है, कुछ फीडबैक देनी है, तो वो भी बहुत पोलाइट वर्ड्स में बहुत ही सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। डीटी से प्रार्थना करके, वैष्णव से अनुमति लेके फिर हमें ये सब स्टेप्स उठाने चाहिए, है ना। अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो बता दें, डिवोशनल सर्विस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, ये परपर में ही प्रभुपाद बता रहे हैं कि रजो तथा तमोगुण से पूर्ण गैर जिम्मेदार व्यक्ति मूर्खता से ऐसे काम करते रहते हैं। तो भक्ति है बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, कभी भी हम इसमें केयर फ्री नहीं हो सकते। केयर फ्री होंगे तो फिर नतीजा सहन करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबली अगर किसी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करना भी है, सेवा के लिए करना भी पड़े, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही पोलाइट वर्ड्स में वैष्णव और भगवान से अनुमति लेके फिर हम कोई फीडबैक या करेक्शन दे सकते हैं। तो ये तो वैष्णव अपराध के प्रति है ना। तो इसके साथ साथ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई हमारे प्रति कुछ ऐसा कार्य करता है कि हम समझें कि मेरे प्रति वैष्णव अपराध कर दिया है ना। वो भक्त हैं, वो कभी भी अपने आप को वैष्णव नहीं मानते ना। तो इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। अपने प्रति हमें पूरा अपने केस में पूरा टॉलरेंट होना चाहिए, पर अन्य भक्तों के प्रति हमें कभी भी किसी ऑफेंस को उसके प्रति पूरा इनटॉलरेंट होना चाहिए। उसको कभी भी टॉयलेट नहीं करना चाहिए। तो इस समय इन इन जो वैष्णव प्रसाद के बारे में सुनते हैं तो स्वाभाविकता में थोड़ा सा डर तो लगता है ना, पर इससे हमें ये भी एक ये भी बात हमें सोचनी चाहिए कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं ना। वैष्णव फ्रेंड्स भी तभी इसीलिए ग्रेव है क्योंकि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो भगवान क्योंकि भक्तों से प्रेम करते हैं इसलिए कभी भी अपने भक्तों के प्रति किसी निंदा को वो सहन नहीं कर सकते। गोपाल चक्रवर्ती का जो केस है, इस केस स्टडी में ये शीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। कि भक्त का स्वभाव होता है कि जो मूर्ख व्यक्ति है उसके दोषों को वो सहन कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, है ना। कृष्ण का स्वभाव क्या है? कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। कि भगवान किसी भक्त की निंदा को सहन ही नहीं कर सकते, सहन करना भी चाहे तभी नहीं कर सकते। ये भगवान का स्वभाव है, भगवान की नेचर है ना। तो जो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं तो क्यों ना दृढ़ता से उनकी भक्ति की जाए, है ना। तो इससे हम ये भी हमें ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान जो दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास आते हैं विष्णु लोक में, तो बहुत से अच्छे अच्छे श्लोकों का भगवान उच्चारण करते हैं अपने भक्तों की महिमा को बताने के लिए। तो भगवान बताते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव धीरा साधु भीर ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिया। अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। ही अस्वतंत्र इव धीरा, मेरे अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भीर ग्रस्त हृदय, कि जो साधु हैं जो वैष्णव हैं वो मेरे हृदय को पकड़ के बैठते हैं, मतलब मेरे हृदय में रहते हैं। तो साधु जनों का हृदय दुखाएंगे तो भगवान के हृदय में पेन होती है। साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिया, तो मेरे भक्तों की बात तो छोड़ ही दो, जो मेरे भक्तों के भक्त भी हैं वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय हैं। डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी, भक्तैर भक्त जनप्रिया, है ना। और नरसिंह लीला से हम देखते हैं कि जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान कितना ही भयावह रूप प्रकट करते हैं। तो कभी वैष्णव फ्रेंड्स करना हो, करने का मन में विचार आए तो नरसिंह देव के रूप का ध्यान करना चाहिए, है ना। कहते अदृश्य अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अदृश्य, जो पहले कभी देखा नहीं गया, अति अद्भुत मोस्ट वंडरफुल, अश्रुतवत पहले कभी सुना नहीं गया। तो इस रूप का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से सुखदेव गोस्वामी भागवतम के सातवें स्कंद में करते हैं। तो बहुत अच्छे चार श्लोक हैं जिसमें पूरी नरसिंह देव के जो रूप है उसका वर्णन है। तो उस रूप का हम स्मरण कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, तो उसमें पता लग सकता है कि वैष्णव जो ऑफेंस है कितना ग्रेव है ना। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, मीमांसमानस्य समुत्थितो अग्रतो नरसिंह रूपस्तदलं भयानकं प्रतप्त चामिकर चंडलोचनं सुरसटाकेश जिम्बितानं करालदंश्रम करवालचंचल शुरंत जीवाम्ब्रुकुटिमुक उल्बनम स्तब्ध ऊर्ध्वकर्णं गिरिकंदराद्भुत व्यातास्य नासं हनुभेद भीषणं दिविस्विशत कायम अदीर्घ पीव ग्रीवो रुवक्ष स्थलम अल्प मध्यमम चंद्रांशु गौरे शुरितम तनुरहे विश्व भुजाने क्षतम नखायुदम। और आगे बताते हैं, दुरासदम निज इतर आयुधा प्रवेक विद्रवित दैत्य दानवम। बताते हैं, मीमांसमानस्य समुत्थितो अग्रतो नरसिंह रूपस्तद अलम भयानकम, कि भगवान इतना भयानक रूप धारण करते हैं। तो इस पूरा भगवान नरसिंह देव के रूप का वर्णन है। प्रतप्त चामेकर चंड लोचनम, कि भगवान की जो आंखें होती हैं पूरे, जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो पूरी लाल होती हैं, तो ऐसी भगवान की आंखें थी। चंड लोचनम सूरज सटाकेश जिम्बितानम कराल दमश्रम, जो उनके दांत थे बिल्कुल भयानक थे। कराल दंश्रम करवाल चंचल शुरंत जीवा ब्रुकुटी मुकुलबनम, तो जीवा थी वो इतनी तीखी थी और इस तरह से ऊपर नीचे हो रही थी जैसे कोई तलवार है वो घूम रही हो ना। स्तब्ध उर्धव कर्णम गिरिकंदर अद्भुत व्यातस्य नासम हनुभेद भीषणम, कि जो उनके कान थे पूरे एक तरह से खड़े थे बताया था कि जब लायन अटैक करता है तो उनके कान पूरे स्ट्रेट होते हैं, खड़े होते हैं, स्तब्ध ऊर्ध्व कर्णम। गिरी कंदर अद्भुत, उनकी जो नासिका थी वो पहाड़ की गुफाओं के समान थी। हनुभेद भीषणम, जितने उनके जॉस से इस तरह से खुले हुए थे ऐसे लग रहा था बहुत ही भयानक है, पूरे यूनिवर्स को खा जाएंगे, ऐसा उसने बताया गया। हनुभेद भीषणम दिवी स्पृशत कायम अधीर्घ पीवर, उनका इतनी इतनी उनका जो बॉडी की जो हाइट थी वो पूरे आसमान को टच कर रही थी। दिवी स्पृशत कायम अधीर्घ पीवर ग्रीवोरु वक्ष स्थलम अल्प मध्यम, उनका जो मध्य पार था बहुत ही पतला था और जो गर्दन थी बहुत छोटी थी, और जितने भी उनके हाथ में आयुध पकड़े हुए थे सभी आयुधों से वो सभी दैनवों और दात्यों को मार रहे थे और उनको वहां से भगा रहे थे। तो ऐसा नरसिंह देव ऐसा रूप का प्रदर्शन करते हैं और इतनी जोर से दहाड़ रहे होते हैं, बताया गया ऐसा लगता है कि जैसे जो ब्रह्मांड के जो दसों जो लेयर्स हैं वो सारी क्रैक हो रही हों, और जितने भी दिग्गज हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड को अपने सर के ऊपर उठा के रखते हैं सब क्या कर रहे थे, भय के कारण सब घबरा रहे थे। निरहराध भीता दिगिवात अरिबिन नखाग्रात, अपने जो नख थे उनको भगवान फ्लैश करे। तो इतना ज्यादा क्रोधित होते हैं भगवान अगर अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है। तो इस समय यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जो वैष्णव अपराध है वो भगवान को सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचाता है, उनको सबसे ज्यादा अपसन्न करता है, तो हमें वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारी भक्तियां बाधा आ रही है, कोई हमारी ऐसी आदत है जिससे वैष्णव को तकलीफ हो रही है, तो उस आदत को बदलने का प्रयास करना चाहिए। और किसी भी तरीके से कुछ हमें भांति पता लगे कि मेरे इस कार्य से वैष्णव को दुख पहुंच रहा है तो उस कार्य को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ये हम इससे शिक्षा ले सकते हैं। और दूसरी शिक्षा हम ले सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, तो क्यों ना अपने पूरे प्रयास करें उस भगवान के चरण कमलों को ग्रहण करने के लिए, उस भगवान के उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कि जो प्रेम उनका भक्तों के प्रति है। और हम ये सब शिक्षाएं इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। और बताते हैं कि हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं अगर हम चैतन्य महाप्रभु के उस आदेश का पालन करें, त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सहिष्णुना अमान ही न मान देना कीर्तनिया सदारी। और जो वैष्णव सदाचार है अगर उसका हम पालन करते हैं तो ये एक तरह से हमारे लिए फेंसिंग का कार्य करता है, वैष्णव सदाचार को पालन करके फिर हम वैष्णव अपराध से अपने आप को बचाते हैं। तो ये कुछ मेरे विचार थे इस श्लोक को लेके, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है सुना है वो मैंने बताने का प्रयास किया। किसी कुछ करेक्शन है, कुछ प्रश्न है तो एक ले सकते हैं, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुधा महारानी की, श्री गौर निताई की, जगत कुशल भूपाद की, गौ प्रेमानंदे हरि।